الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ ان کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت. مہلت دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب مہلت دی گئی تو مسلمانوں نے ریئیکٹ نہیں کیا مکہ میں، تو کتنے سارے لوگوں کے دل مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے. ایک سائلنٹ میجورٹی تھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، خباب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو صرف اس بات پہ کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصور تھے، تو اس وقت بھی یہی کافر کہہ رہے تھے کہ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی. تو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جو مہلت کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، تو کوئی بھی جلدی نہ کرے کہ بس جلدی سے فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ انسان جلد باز ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے جو ہم نہیں جان پاتے. اب آگے سورہ آلہ. سورہ آلہ جو ہے یہ مسبحات میں سے ہے، کیونکہ ہم پہلے مسبحات پڑھ چکے ہیں، سبح للہ اور یسبح للہ. یہ سات مسبحات صورتیں نا، تین سبحہ سے شروع ہوتی، تین یسبح سے شروع ہوتی، اور یہ ہے سبح اسم ربک العالی. اس میں سبح ہے، اس میں امر کا صیغہ، وہ ماضی اور مضارع میں تھی. اب یہ سات مسبحات جو کہلاتی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری یہ والی سورت سورہ آلہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور سورہ غاشیہ کو، یعنی اگلی جو سورت آ رہی ہے، اس کو جمعے اور عیدین میں اور نماز استسقاء میں پڑھتے تھے، اور اس کو وتر میں بھی پڑھتے تھے، یعنی اس والی سورت کو وتر کی پہلی رکعت میں اس کو پڑھتے تھے، پھر دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص. تو آپ بھی یہی کوشش کیجئے، اور اسی طرح عیدین اور جمعے میں آپ دیکھیں کیا خاص بات ہے کہ ان میں بھی یہی پڑھی جاتی تھی، اس لیے کہ ان میں بھی جہری کی رات ہوتی ہے نا، تو جب سارا مجمع سن رہا ہے اور بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے جمعے پہ بھی اور عیدین پہ بھی، بڑی عید پہ بھی اور چھوٹی عید پہ بھی، عیدین اس لیے کہہ رہے، تو ان میں ان سورتوں کے اندر تذکیر ہے، ریمائنڈرز ہیں. اور جو ریمائنڈر آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور پھر سورہ غاشیہ بھی ہم دیکھیں گے، تو یہ ریمائنڈرز اتنے زیادہ انسان کو، یعنی ایک مختصر صورتیں اور یاد دہانی بہت بڑی ہیں. اور جو بھی قرآن میں ریمائنڈرز ہیں وہ اس کے اندر سمجھ لیں کہ ان کی سمری آ گئی. تو یہ سورت، پچھلی سورت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اور اب یہ سورت مکی سورت ہی ہے. اور یہ سورت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی. سبح تسبیح کیجئے اسم نام کی، ربی کا اپنے رب کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے، سب سے بلند. تسبیح کا معنی ایک آخری دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی صورت اس سے نہیں شروع ہوگی. سبحا کہتے ہیں تیرنے کو، اور ایسا تیرنا کہ اوپر فلوٹ کرے، نیچے نہ جائے. تو اس سے تسبیح کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ تعالی کی جو بھی صفات کاملہ ہیں، اللہ تعالی کی جو بھی شان ہے، وہ نیچے نہیں ہونی چاہیے، وہ اوپر ہی رہنی چاہیے. جب تسبیح ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم ایسی پرفیکشن بیان کرتے ہیں کہ وہ نیچے نہ ہو، نہ اس کا نام، نہ اس کی صفات میں سے کوئی بات. تو تسبیح کسی شے کو اس کے مقام پہ برقرار رکھنا اور گرنے نہ دینا. تو اللہ کی تسبیح کیا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے، بلند اور برتر ہے، اس شان کو کبھی گھٹنے نہ دینا، نہ مخلوق کے برابر لانا، نہ مخلوق کو اس کے برابر کرنا، ورنہ اس سے بھی اس کی شان گھٹ جائے گی کہ مخلوق کو اس کے برابر کر دیا، اس کو نیچے کر دیا. तो ऐसी कोई भी चीज अल्लाह ताला के साथ वाबिस्ता ना की जाए, ऐसी उसके साथ ना मतलब कनेक्ट की जाए जो उसकी शान के लायक ना हो। इसी वजह से हम आसान लफ्जों में तस्बीह किस चीज को कहते हैं कि अल्लाह ताला को हर ऐब से, हर किस्म की फ्लॉ से, हर किस्म की एहतियाज से, हर किस्म के नक्स से, कमजोरी से, हर किस्म की, उससे उसको पाक करार देना, यानी उसकी शान जिस है जिस जगह पे, जब मैंने आपको तैरने से बताया ना, यानी उसको वहां पे बरकरार रखना जो उसका मकाम है, वहां से नीचे ना आने देना। तो सबाहा कहते हैं कोई चीज तेजी से हरकत करे और अपनी सतह को बरकरार रखे, इसीलिए तैरने से ना फ्लोट करना ऊपर, ये नीचे नहीं डूबने देना, ऊपर ऊपर रहना। और कुल्लू फी फलक यस्बहून, यानी हर एक अपने फलक के अंदर तैर रहा है, हर सैयारे सितारे के लिए आता है ना। तो अल्लाह ताला में कोई कमी नहीं है, ये हम इकरार करते हैं। अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ताला में कोई कमजोरी नहीं है, अल्लाह ताला में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके शान के लायक ना हो। वो चीज से पाक है, उस सारे तसव्वुरात से पाक है वो, और इसमें फिर शिर्क से पाकी भी आ जाती है। तो यहां पे आया कि सब्बहा सब्बिह हिस्म रब्बिका, नाम की तस्बीह बयान करो, नाम की रब के, अपने रब के नाम की जो आला है, अल्लाह ताला का नाम, यानी उसकी तस्बीह बयान करो। तो अल्लाह ताला की तस्बीह हो गई ना, क्योंकि उसका नाम उसकी तस्बीह है, और वो आला है, वो जात सबसे ऊपर है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि एक तो ये कि अल्लाह ताला के नाम की भी तस्बीह बयान की जाए, यानी अल्लाह ताला के नाम को भी इस तरह ना लिया जाए जैसे कि मतलब कि नाम की बेअदबी हो, या वो नाम उस जात के लायक नहीं है और अपनी तौर पे कोई नाम रख दिया जाए, इस तरह से ना किया जाए। अल्लाह ताला को सिर्फ उसी नाम से पुकारा जाए जो कोई कुरान ने बता दिया, या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उनके अलावा नामों से अल्लाह ताला को ना पुकारा जाए। और क्यों, ये भी फिर उसको उसकी शान को घटाना है उसके नाम की। तो जैसे कि लोग कह देते हैं अल्लाह मियाँ, तो मियाँ कहना कोई सही नहीं है, इसलिए कि मियाँ शोहर को कहा जाता था। इसी तरह बास कहते हैं अल्लाह साईं, साईं भी फकीर को कहते, तो ये अल्लाह ताला के लिए लायक ही शान नहीं है कि ऐसे नाम लिए जाए। अल्लाह सुबहाना व ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, और इस तरह से उसकी किसी एट्रीब्यूट के साथ, उसकी किसी सिफत के साथ अल्लाह ताला को पुकार ले, लेकिन इस तरह से नहीं कि खुद से आप कोई नाम उसके लिए रखें। तो चाहे वो जितनी भी आप मोहब्बत से, या जितने भी आप समझते हो कि इस नाम में परफेक्शन है, लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो हमने ही बनाया हुआ। तो इसलिए उसके नाम को जो उसने बताए हैं उसी तरह उसको रखा जाए और उसी तरह उसको लिया जाए। और इसी तरह अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम अल्लाह के नाम पे ना रखा जाए, जैसे उसका नाम अल्लाह और अर्रहमान, ये नाम किसी और के नहीं होने चाहिए कि हम किसी और का नाम ये रख दें। खास तौर पे रहमान नाम को लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस तरह से करते हैं कि किसी का नाम अब्दुलरहमान होता है तो रहमान रहमान साहब कहना शुरू कर देते, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया सब्बिहिस्म रब्बी का, अल्लाह ताला का नाम भी बहुत बुलंद है और उसका नाम भी बहुत इज्जत वाला है, क्योंकि ये उसका नाम है। उसका नाम बगैर ताजीम के नहीं लेना चाहिए, बेध्यानी में ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जो उसकी शान के लायक ना हो। इसी तरह मैं जैसे लोग हलीम कहते हैं, हलीम अल्लाह ताला का नाम है, अल हलीम, अब उसको अपने आपने एक खाने के ऊपर कर दिया, बेशक आप जितनी भी तावीलें करते रहे कि नहीं जी कोई बात नहीं, इससे कोई इतना नहीं हो जाता, वो तो इस तरह होता है, वो तो ऐसे होता है, मगर मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि देखिए, हम अपने नामों को तो पसंद नहीं करते कि हमारा नाम इस तरह लिया जाए कि कोई कहे मसलन जो भी हमारा नाम है उसको कहे कि ये जल गया है, ये लग गया है, ये मजेदार है, ये बहुत ही बेकार है। तो देखें आप कितना बड़ा उसका अजमत वाला नाम है, हम तो उसके नाम को भी, यानी उसका नाम भी इतना इज्जत वाला है, फिर हम उसके नाम को कैसे इस तरह से ले सकते हैं, चाहे कोई भी कितनी तावीले करे कि नहीं कोई बात नहीं जायज है, क्या बचना नहीं चाहिए इससे? तो इसलिए इस चीज का डिश का कोई और नाम रख दे, लेकिन ये इस तरह से ना कहें कि अल्लाह ताला के नाम की जिसमें बेअदबी होती हो। अदब आप अपने माँ बाप के नाम का या अपने नाम की, तो कोई अपने नाम की रख लेना डिश कोई,
उस नाम की लिख करें और फिर देखेंगे आपको कैसा फील होता है लोग ऐसे करें। अपने लिए तो पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला के लिए पसंद है। अजीब है बात ये। तो इस तरह से अल्लाह ताला के नाम की भी बहुत इज्जत है। और फरमाया इस्मा रब्बी का, अपने रब के। यहाँ रब क्यों कहा गया? इसलिए कि सबसे ज्यादा इंसान का जो करीबी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ बनता है ना, वो इस नाम के जरिए से बनता है, रब। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रब का माना क्या है, खालिक, मालिक, पालने वाला, उसकी परवरिश करने वाला। उसके अंदर उसकी निगेबानी भी आ जाती है, निगेदाश्त भी आ जाती है, उसकी जरूरियात को पूरा करना भी आ जाता है, उसको रिस्क देना भी आ जाता है, उसका मास्टर। और जब भी आप मालिक की बात करेंगे तो एक मालिक है, आका है, तो दूसरा क्या होगा? गुलाम होगा ना। अब देखिए हमारा अल्लाह ताला के हर नाम के साथ कोई ताल्लुक है। जब हम रब कहते हैं तो फिर समझना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, कोई औरत कहे ये मेरा शौहर है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये उसकी बीवी है ना। कोई कहे बच्चा कि ये मेरी माँ है, तो इसका मतलब ये उसका बेटा है। तो इस तरह से हर नाम के साथ भी, कोई कहे कि अल्लाह मेरा रब है, तो इसका मतलब वो तो कुछ है ना, क्या ताल्लुक है उसका? मेरा रब है तो इसका मतलब आपका क्या ताल्लुक है उसके साथ? तो रब का ऑपोजिट क्या है? गुलाम। वो कह रहा आपका मतलब है कि जो मालिक है, जो आका है। तो जब हम अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम कर लें ना, तब तो यहीं पे ही आपकी सारी बातें, यहीं पे आपके गिले शिकवे और यहीं पे जो सारे आपके जो कुकू चुबा, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिसको आपने मान लिया कि ये मेरा मालिक है और मैं इसका गुलाम। अब बताएं जो गुलाम होते हैं वो कैसे करते हैं? गुलाम तो आका के सामने बिछे रहते हैं, गुलाम आका के सामने आजी करते हैं, गुलाम आका से डरता है कि ये मेरा आका कहीं नाराज ना हो जाए। गुलाम आका को खुश करने की कोशिश करता है। क्या यहाँ पे तो गुलाम भी नहीं है, आम जॉब्स पे भी लगे होते हैं, फिर भी लोग जाके कितनी खुशामदे करते हैं कि ये हमारे बॉस है। तो सोचे अगर एक गुलाम है तो वो अपने आप को गुलाम समझता है, तो वो अपने आका को कितनी तरह से खुश करने की कोशिश करेगा कि ये मेरा मालिक है। वो तो दुनिया में एक छोटे से पैसों से खरीदे हुए होते हैं, तो तब भी ये बात होती है। तो सोचे जो वो मालिक हर चीज का, तो फिर कितनी उसकी ताजीम होनी चाहिए और कितना उससे डरना और कितना उसको खुश करने की कोशिश में लगे होना चाहिए। तो जब इंसान खुद मान ले कि वो मेरा रब है, तो फिर मैं गुलाम हूं। फिर गुलाम का मतलब ये होता है कि उसके बाद वो कहे उसने ऐसे क्यों किया और उसने ये क्यों किया और मैं तो उससे ये पूछूंगा और मैं क्यामत के दिन उसे ये सवाल करूंगा और वो ये क्यों नहीं फैसला करता और वो क्यों नहीं करता। तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं और सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। वो तो मेरा मालिक है, जो चाहे करे, फालू लिमा यूरीद। ठीक है, तो जबकि कोई रब ना समझे अल्लाह ताला को, तो फिर वो तस्बीह भी सही से नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है वो रब ही नहीं जानता, तो फिर उसको तस्बीह कैसे आएगी उसकी जुबान पे? ये तस्बीह तो उसको पाप करार देना। इसमें रब्बी का, अपने रब की तस्बीह कीजिए, यानी वो मेरा रब है, अल आला, जो सबसे बुलंद है, उससे बुलंद कोई जात नहीं, उसको सबसे बुलंद मान लिया, सबसे ऊंचा मान लिया। पिछली सूरत सूरत तारे कुछ सितारों की बात थी, सितारे भी बुलंद होते हैं, लेकिन उससे भी बुलंद तुम्हारा रब है। तुम सितारों से बहुत मुतासिर होते हो, इतने दूर, इतने ऊपर, उससे भी ऊपर तेरा रब है। अल्लदी खलका, तो अब पिछली बात से ही आगे कि रब कौन है, रब आला तुम्हारा कौन है? वो जिसने पैदा किया। तो इंसान कभी अगर सोचता है ना कि मैं क्यों तस्बीह करूं, मैं क्यों तारीफ करूं, मैं क्यों परफेक्शन बयान करूं, क्या वजह है, क्या चीज है जो कि मुझे नजर आती है आंखों से और उसके बाद मैं ये कहूं कि मैं उस रब की तस्बीह करूं? इसलिए कि उसने मुझे पैदा किया ना। पैदा करना, मैं तो होती ना, एग्जिस्टेंस ही मेरी नहीं थी अगर वो मुझे पैदा ना करता, तो कितना बड़ा उसका एहसान है। देखिए सारी चीजें बाद में आती, आप पैदा होते तो फिर आप कुछ करते ना, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो कोई नेमते हैं, लेकिन सबसे पहली नेमत जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर की, वो हमें पैदा किया ना, उसके बाद ही हम दूसरी नेमतों को एंजॉय कर सके। लेकिन अगर पैदा ही ना होते, वो सबसे पहला कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसीलिए फल ज्ञानजोर इंसान मिम्मा खोले, तुम देखो तो सही अल्लाह ताला ने तुम्हें किस चीज से पैदा किया, अपनी पैदाइश पे तो गौर करो। तो उसने यहाँ पे अपना तारुफ किस तरह कराया कि मैं तुम्हारा रब हूं इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया। पिछली मैं था खुली का, बताया नहीं अल्लाह ताला ने कि किसने पैदा किया, खुली खुली का मिम्मा इंदाफिक, वहां पे खुली का था, मजहूल था, यहाँ पे है अल्लदी खलका, वो है वो रब जिसने पैदा किया तुमको, किससे, नुतफे से पैदा किया, फसवा, फिर सवा, सवा उन जैसे हम कहते हैं ना बराबर करना, तो बराबर किया उसको, बैलेंस किया उसको, इवन आउट किया, जैसे हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वो खलका है, और एक उसके बाद उसकी फिनिशिंग करना वो समझने सवा है। ये अल्लाह ताला ने किस तरह नोक पलक संवारी जिसको कहेंगे, दुरुस्त कर दिया, परफेक्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं ना इसकी फिनिशिंग करनी, तो कहते हैं फिनिशिंग में तो बल्कि ज्यादा टाइम लगता है, और फिनिशिंग ही तो सारी बात होती है कि वो किस तरह से, तो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी फिनिशिंग की, कितना बराबर इसको किया, देखें बैलेंस रखा, एक साइड और दूसरी साइड बराबर है, ये नहीं कि एक हाथ लंबा और दूसरा छोटा, एक टांग लंबी और दूसरी छोटी, और इसी तरह देखें हर चीज में बैलेंस रख, इंसान की को जो बनाया है तो ऐसे नहीं कि इवन नहीं है वो, बल्कि उसको इवन आउट किया, कितनी स्मूथ है इंसान की स्किन, इंसान के कान में एक तरफ फ्लूइड ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, इंसान को चक्कर आने लगेंगे, तो उसमें भी बैलेंस रखा, अल्लाह हु अकबर। तो ये इंसान ऐसा बनाया कि इंसान आज बनाता है ना तो कितना बना देता है, क्या बहुत बढ़ के भी बना लेगा तो रोबोट बना लेगा, जो खैर वो तो भी पुर्जे जमा करके और अल्लाह ताला का दिया हुआ मटेरियल से ही बनाता है, लेकिन रोबोट में और एक इंसान में कितना फर्क है, चाहे रोबोट भी अब बातें करने लग गए या कुछ है, लेकिन जज्बात नहीं उसमें, नफ्सियात नहीं उसकी कुछ, वो रोता नहीं है, वो हंसता नहीं है, वो खुश नहीं होता, उसको किसी चीज़ पे दुख नहीं होता, वो अल्लाह ताला की आगे सजदे नहीं कर सकता, वो कुर्बानी नहीं दे सकता, तो वो तो एक रोबोट, एक मशीन ही है। अल्लाह ताला ने इस बात की वजह से फरमाया ना कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, या अन्नास उबदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तुम अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि उसने तुम्हें पैदा किया है, और फिर पैदा करके दुरुस्त किया, वल्लदी कद्दर फहदा, फिर उसने तकदीर लिखी, तकदीर क्या होती है, कद्दर क्या है, तकदीर, उसने जिसने तकदीर बना दी तुम्हारी, इसने अंदाजा तुम्हारा बनाया, फिर फहदा, फिर हिदायत बख्शी, तो तकदीर क्या है, अल्लाह ताला की जो परफेक्ट कैलकुलेशन है ना, जो उसकी प्लानिंग है, वो है तकदीर। और ये कब हुई थी, मैंने बताया आपको, जमीनों आसमान के बनाने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की तकदीर लिख दी थी। हम तो किसी चीज की प्लानिंग करें या अंदाजा लगाएं, तो प्लानिंग करने के बाद अगर ज्यादा अरसा गुजर जाए तो प्लान ही भूल जाता है कि क्या प्लान किया था, तो अल्लाह ताला भूलता नहीं, उसने तब प्लानिंग की थी, उसकी प्लानिंग में सोचें ये लिखा हुआ था कि एक दिन एक बंदी होगी जो यहां बैठी होगी, उसका नाम ये होगा, वो इस तरह पढ़ा रही होगी, ये इस तरह पढ़ रही होगी, इस तरह जाके ये करेगी, इसकी नाक नक्शा कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी तबीयत में क्या क्या होगा, इसकी जहानत कितनी होगी, कितनी लंबी होगी, कब किस जमाने में पैदा होगी, किस दिन मरेगी, किस के साथ इसकी शादी होगी, इसके बच्चे क्या होंगे, सब चीज लिखी, और ये लौहे महफूज में है जिसका भी हमने पढ़ा। अल्लाह ताला की प्लानिंग ऐसी परफेक्ट है कि वैसा ही होता है, हर माइन्यूट डिटेल तक प्लानिंग हुई हुई है, हर माइन्यूट डिटेल तक, ऊपर ऊपर की नहीं है। फहदा, फिर हिदायत दी, हिदायत भी दो तरह की है, एक कौनी और एक शरई। कौनी हिदायत का मतलब है जो नेचुरल इंसान के अंदर होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे, या बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, मछली पैदा होते ही तैरना शुरू कर देती है, तो ये उनको किसने, ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर रख दी, ये कौनी हिदायत है, और एक है शराई हिदायत, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए इंसान को लिए अंबिया भी भेजे, किताबें भी भेजी, उसके को अकल समझ भी दी, उसके लिए उसके मुताबिक उसकी फितरत के अंदर भी रखा, ये कौनी हिदायत है, तो अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ दिया, उसकी तकदीर भी लिखी हुई और उसके लिए हिदायत का इंतजाम भी अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिया। अल्लाह अकबर, अभी सोचा कि अल्लाह ताला ने कितना एहतमाम किया, कितने लाखों अंबिया भेजे, कैसी प्यारी किताब भेजी, और इसको महफूज भी रखा हमारे लिए, और पिछले वालों की महफूज नहीं थी किताबें, तो और अंबिया आ जाते थे उनको हिदायत का पैगाम देने के लिए, और फिर उसके बाद खुराक की बात, वल्लदी अखरज अल मरआ, फिर उसने मरआ निकाला, अखरजा निकाला, वो जात है जिसने अखरजा निकाला मरआ, चारा, चारा भी कहे राई चरवाहे को कहते हैं ना, तो मरआ से ग्रीनरी सारी मुराद है, जितनी भी ग्रीनरी है, तो उसने ग्रीनरी निकाली, फजाला हूँ, फिर बना दिया उसको, गुसाअन, गुसा कहते हैं खुश्क घास को उसा, और उसा अहवा, अहवा स्याह यानी बिल्कुल जो स्याही मायल चीज हो जाए यानी डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन को अहवा और उसान क्या है, खुश्क घास। कि पहले अल्लाह ताला ग्रीनरी पैदा करता है, फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाती है, खुश्क होके फिर वो स्याह हो जाती है और खत्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि एक तरह एक दिन इंसान का भी यही अंजाम है कि वो इसी दिन पैदा होगा, एक सरसब्ज और शादाब होगा, और एक दिन वो रौनक खत्म हो जाएगी। एक दिन वो जो रौनकें थी, वो इंसान वो जवान होता है, भरपूर होता है, और उसके बाद वो दुनिया से चला जाता है। अल्लाह अकबर। तो दूसरा इसका माना ये है कि सब्जा था और फिर देखो पूरी जौबन पे आया, कैसे रौनक हो गई, कैसे एक दिन आएगा कि जो है ना रौनक हो जाएगी, डार्क ग्रीन हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा, और इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली है कि देखिए एक दिन ये दीन भी आगे बढ़ेगा और एक दिन ये मुकम्मल भी होगा और अपने पूरे जौबन पे भी आएगा। और दोनों माने हो सकते हैं, बास बादुल मौत का भी हो सकता है कि जैसे एक दिन ये खत्म हुआ, चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया, फिर और कुछ उग जाता है, या एक दिन इंसान खत्म हो जाएगा पूरी जौबन पे जाके, और दूसरा ये कि एक दिन ये वही का सिलसिला भी मुकम्मल होगा और पूरे जौबन पे आएगी, क्योंकि आगे कुरान की बात आ रही है ना, इसलिए ये दूसरा माना भी हो सकता है। पूरा सरसब्जो शादाब हो गया ना, डार्क ग्रीन, एक ग्रीन ऐसा होता है जो स्याही मायल हो जाता है, यानी उस इतना डार्क ग्रीन होता है कि काला काला सा ग्रीन होता है, तो वो अहवा है। सनुकरियुका फला तंसा, हम आपको पढ़ाएंगे आप भूलेंगे नहीं है नबी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा ये फिक्र होती थी। पहले भी सूरह कयामा में भी हम पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत फिक्र थी कि कहीं मुझे भूल ना जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि अन करीब स अन करीब नुकरियु, हम पढ़ाएंगे का आपको, फला तो ना, तंसा निसियान से आप भूलेंगे, आप भूलेंगे नहीं है नबी, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। ये तसल्ली दे दी गई, आप इसकी इतनी फिक्र ना करें कि मुझे भूल जाएगा, अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ले ली कि आप नहीं भूलेंगे। सुभान अल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। अब इसका मतलब क्या कि जो अल्लाह ताला चाहे तो क्या आप सरासर भूल गए थे? नहीं, ये तो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। हाँ, यहां पर इस तरह का एक्सेप्शन लाने का मकसद फिर क्या है कि अल्लाह ताला अपनी शान बयान कर रहा है कि वो जिस चीज को चाहे वो वैसे ही हो जाती है, वो अल्लाह ताला अगर किसी को बुलवाना चाहे तो वो याद ही नहीं रख सकता। और दूसरा मुफसरीन ने इसका माना लिया है कि अल्लाह ताला किसी हुक्म को मनसूख करना चाहे तो वो आपके दिल से भी भुला देगा, जैसे रजम की आयत हजरत उमर ने फरमाया कि वो हम पढ़ते थे लेकिन फिर अल्लाह ताला ने भुला दी, तो ये भी माना हो सकता है। तो मगर जिसको अल्लाह ताला चाहे, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा, बेशक वो जानता है अल जहर को भी और यख्फा को भी, जो आप वो जानता है जो जाहिर करते हैं और जो दिल के अंदर है पोशीदा है। ये जो जहर है ना, इसका उलट सिर है, इसका उलट यख्फा नहीं है। लेकिन यहां पर देखें, एक तो यख्फा वर्ब आया और अलजहर नाउन आया, तो अल्लाह ताला जानता है जो जाहिर है और जो पोशीदा है। तो पहली बात ये कि ये नहीं है उसका उलट, तो उलट तो आना चाहिए था कि अल्लाह ताला सिर को भी जानता है, मगर सिर सीक्रेट को कहते हैं, जैसे पहले आया ना सीक्रेट, सीक्रेट बाज दफा इंसान दूसरे को बता भी देता है तो मुंह पे तो आई ना सीक्रेट, बताते हुए आहिस्ता आहिस्ता बताता है, तो वो जाहिर तो हुई कहीं, लेकिन अख्फा वो सीक्रेट है जो कभी बाहर आई ही नहीं, कभी भी नहीं आई। और जहर वो जो जाहिर होता है, अब वो नाउन है और ये वर्ब है, तो जो चीजें दिलों में है वो तो ज्यादा देर दिल में नहीं रहती, वो तो कभी बाहर भी आ जाती है, और जो जाहिर में होती हैं वो ज्यादा होती हैं, चीजें जो दिलों में होती हैं वो कम होती हैं। तो नाउन जहर के लिए आया और यख्फा वर्ब छुपे हुए के लिए आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो ये तसल्ली दे दी गई कि आप भूलेंगे नहीं ऐ नबी, और अल्लाह ताला जानता है जो आप तिलावत करते हैं जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ, और जो उसने आपको भुला दिया वो उसको भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि वो जो आप दिल के अंदर सोचते हैं कि मैं फिक्र कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे भूल ना जाए, वो उस फिक्र को भी जानता है। तो वो इतनी पोशीदा बातों को भी जानता है, फिर उससे इंसान छुप कैसे सकता है? खास दफा इंसान को खुद भी नहीं एहसास होता कि मेरे अंदर क्या नीयत है, क्या मेरे अंदर छुपी हुई नीयत बिल्कुल अंदर जाके कहीं है, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। इस अकीदे को और मजबूत करने की जरूरत है। वह नुयस्सी रू का लिल युसरा, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसे ही तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत इतनी पसंद थी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक और तसल्ली दी, ए नबी हम आपके लिए आसानी कर देंगे, आसानी के लिए हम आसानी कर देंगे, आसानी के लिए। क्या मतलब? देखिए वनुयसीरु का फरमाया, नुयसीरु लका नहीं है, हम आपके लिए आसानी कर देंगे, यहाँ पे तो ये हम आपको आसान कर देंगे ये माना बनता है, लेकिन लाम को भी हटा दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब के लिए। नून शुरू में ना हम कर देंगे और का है फिर साथ ही, हम इतना आसान कर देंगे आपके लिए, तो इसको भी करीब कर दिया गया, का को लाम भी हटा दिया गया। तो यानी अब आसान नहीं, बल्कि हम आपके लिए आसान कर देंगे रास्ता ताकि पहुंच जाए आप लिल युसरा, युसरा तक पहुंच जाए, अल्टीमेट आसानी तक, बहुत ज्यादा आसानी तक। यानी ये नहीं है कि अभी मुश्किल है तो आगे आसानी, अल्टीमेट आसानी तक आप पहुंच जाए, जितनी से ज्यादा कोई आसान चीज नहीं हो सकती, उस तक आप पहुंच जाए। तो यानी आपकी ये सारी स्ट्रगल को आसान कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला आपके कुरान पहुंचाने को आसान कर देगा, अल्लाह ताला आपके लिए हिफ्ज रखना, याद रखना आसान कर देगा, और आपके जो मिशन है इसको आसान कर देगा, यानी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां ही आसानियां कर देगा। और इसका ये भी किया गया, इसकी मुराद युसरा से मुराद जन्नत भी ली गई कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत को आसान कर देगा, है नबी हम आपके लिए इतनी आसानी कर देंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी थी। आप देखे पहले हमने पढ़ा था ना, बोला था यसन्नल कुरान ले दिक्री पहल में मुद्दत, ये जो सूरह कमर में था, हम आसानी कर देंगे आपके लिए नसीहत, ये कुरान को नसीहत के लिए। तो ये कुरान का हिफ्ज करना भी आसान, और कुरान की जो, इसीलिए तो आप देखें दुनिया में इस किताब के जितने हाफिज हैं किसी और के नहीं। दूसरा ये कि इसका, इसको दावा के मैदान में भी, कि इसकी नशरों इशायत इसको आगे पहुंचाना भी आसान कर देंगे। आपके पास कितना लिमिटेड टाइम था, बहुत ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं था, सिर्फ 23 साल के अंदर जो इनकलाब आया, कि कहां वो जो बद्दू थे और मुशरिक थे बुत परस्त थे, वो कहां इस्लाम के लिए जाने कुर्बान कर देने वाले बन गए, और कहां उनके ईमान के लेवल चले गए, कोई सोच भी नहीं सकता कि 23 साल में ऐसी। यहाँ पे तो देखें कौमें आती हैं और कितने साल हो जाते हैं मुल्कों को आजाद हुए हुए, और क्या उनकी हालत होती है, आप खुद ही अपने अपने मुल्कों को देख लें कि भाई क्या उनके हालात होते हैं, कि कैसा एक जिहालत के अंदर जो पड़ी हुई कौम, उसको किस तरह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिया बनाया, कि कैसे उनको उठा के कहाँ तक पहुंच गए, रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन्ह बन गए। और जब हम पिछले टाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं जमाना जहालत, इतनी जहालत थी तो सोच भी नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने कैसी आसानियां कर दी, और चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें आसान हो जाती हैं जब इंसान शुरू करता है, तो कोई भी चीज मुश्किल होती है बेशक, लेकिन जब इंसान उसको करना शुरू करता है ना और करता जाता है, अल्लाह ताला आसानियां करता ही जाता है, और वो फिर चीज उसकी पार्ट ऑफ नेचर बन जाती है। फिर लोग कहते हैं आप कैसे कर लेते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं मुश्किल लगता, क्योंकि देखिए जब इंसान चलता रहता है ना एक रास्ते पे, तो वही आसान हो जाता है। अब आप यहाँ पे बैठ के इतनी देर कुरान सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लोग आपको देखते होंगे वो कहते हैं आप कैसे कर लेते, आप कैसे पढ़ लेते, आप इतनी देर कैसे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये उस वक्त होता है जब आप कदम बढ़ाते रहें, चलते रहें, तो अल्लाह ताला उसी चीज को आसान फरमा देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने युसरा फरमाया, इजीएस्ट, एक होते ना युसर और एक है युसरा, इजीएस्ट तक अल्लाह ताला आपको पहुंचा देगा, इतनी आसानी करेगा। और पहले भी नहीं कि ओसर थी और उससे युसर तक, नहीं, नुयस्सिरु का लिल युसरा, हम आसान कर देंगे युसरा तक, इतनी आसानी करेंगे कि इजीएस्ट हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो यहां तक आज का हम अपना लेसन रखते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम अगली भी दो सूरतें करने की कोशिश करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.